एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो सुनने में तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है, पर असल में हमारी दुनिया को बदलने की दहलीज पर है। बायोफैब्रिकेशन।
बिल्कुल, बायोफैब्रिकेशन मतलब चीजों को मशीनों से नहीं बल्कि जीवन की प्रक्रियाओं का इस्तेमाल करके बनाना, या कहें उगाना।
उगाना, हाँ।
हमारे पास आज दो तरह के स्रोत हैं जो इस कमाल के विचार को समझाते हैं। एक हमें डॉक्टर एरिस थॉर्न जैसे एक काल्पनिक विशेषज्ञ का नजरिया देता है, वो इस फील्ड को गहराई से जानती हैं, ऐसा कह सकते हैं।
अच्छा,
और दूसरा स्रोत?
दूसरा स्रोत हमें इस क्षेत्र के कई असल विशेषज्ञों के, मतलब उनके सामूहिक ज्ञान और अनुभव से रूबरू कराता है।
तो एक तरफ एक अकेली दूरदर्शी सोच और दूसरी तरफ कई लोगों का जमीनी अनुभव।
सही, हाँ। और ये विषय आज इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये हमारे जीने, बनाने, यहाँ तक कि प्रकृति के साथ हमारे रिश्ते को भी पूरी तरह बदल सकता है। सोचिए जरा, क्या भविष्य में हम अपनी जरूरत की चीजें फैक्ट्रियों में नहीं
बल्कि लैब में उगाएंगे?
हाँ, यही सवाल है। और देखिए, ये सिर्फ लैब तक सीमित नहीं रहने वाला। दवाइयाँ, हमारा खाना, हमारे कपड़े, यहाँ तक कि घर बनाने के तरीके भी सब बदल सकते हैं।
तो आज की चर्चा का मकसद यही है कि इस उभरती हुई तकनीक की संभावनाओं को समझें और चुनौतियों को भी।
बिल्कुल, और ये जाने कि जीवन की शक्ति का इस्तेमाल करके हम एक ज्यादा टिकाऊ, एक बेहतर भविष्य कैसे बना सकते हैं।
चलिए तो पहले उन आवाजों को थोड़ा जान लेते हैं जिनके विचारों पर हम आज बात कर रहे हैं। पहले स्रोत की प्रतिनिधि है डॉक्टर एरिस थॉर्न। काल्पनिक है पर बायोमेडिकल इंजीनियरिंग और रीजेनरेटिव मेडिसिन की दुनिया का एक जाना माना नाम है, ऐसा मानते हैं।
हाँ, उनके पास MIT, स्टैनफोर्ड जैसी जगहों से डिग्रियां हैं, मतलब अकेडमिक रूप से बहुत सशक्त हैं। और वो थॉर्न इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजिकल डिजाइन की निदेशक भी हैं। 3D बायोप्रिंटिंग और स्मार्ट बायोमटेरियल्स पर काफी काम किया है उन्होंने।
हाँ, और उनकी खास बात यह है, जैसा कि स्रोत बताते हैं, कि वो गहरी तकनीकी समझ को एक दार्शनिक नजरिए से जोड़ती हैं।
मतलब
वे सिर्फ ये नहीं बताती कि ये कैसे काम करता है, बल्कि ये भी सोचने पर मजबूर करती हैं कि इसके मायने क्या हैं, इसका समाज पर क्या असर होगा।
अच्छा, ये दिलचस्प है। और दूसरा स्रोत, वो हमें क्या याद दिलाता है?
वो स्रोत हमें याद दिलाता है कि बायोफैब्रिकेशन किसी एक इंसान की देन नहीं है, ये तो जीव विज्ञान, मटीरियल साइंस, इंजीनियरिंग, डिजाइन, मतलब कई अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञों के साथ मिलकर काम करने का नतीजा है।
सही बात है, इसमें तो बहुत सारे लोग शामिल होंगे।
बिल्कुल, इनके पास दशकों का तजुर्बा है और वही तजुर्बा लैब के आइडिया को असल दुनिया में लाने में मदद करता है।
तो आज की बातचीत में हमें ये दोनों पहलू मिलेंगे, एक तरफ एक दूरदर्शी विशेषज्ञ की सोच
और साथ ही कई प्रैक्टिकल विशेषज्ञों का सामूहिक ज्ञान। इससे हमें तकनीक की बारीकियों और समाज पर इसके असर दोनों को समझने में मदद मिलेगी।
बहुत बढ़िया, अब आते हैं इस विषय के मूल आइडिया पर। बायोफैब्रिकेशन का सार क्या है, मतलब निचोड़ क्या है?
देखिए, स्रोत बताते हैं कि हम औद्योगिक क्रांति के बाद एक और बड़ी क्रांति के मुहाने पर खड़े हैं, पर यह क्रांति बहुत अलग है।
अलग कैसे?
पुरानी क्रांति थी तोड़ने जोड़ने की, मतलब कच्चा माल निकालो, मशीन से गढ़ो, फिर जोड़ो। ये नई क्रांति है उगाने की, संवर्धन की, खेती करने जैसी।
खेती करने जैसे, वाह।
बिल्कुल, इसका केंद्रीय विचार है कि पृथ्वी पर सबसे बेहतरीन, सबसे कुशल और सबसे टिकाऊ फैक्ट्री कोई मशीन नहीं,
बल्कि एक जिंदा कोशिका है, एक लिविंग सेल।
एकदम सही, प्रकृति पिछले 3.5 अरब सालों से इसी फैक्ट्री का इस्तेमाल कर रही है, सोचिए।
कमाल है।
अगर हम इसकी भाषा सीख लें, मतलब DNA, प्रोटीन, कोशिकाओं का आपसी संवाद, तो हम इसकी अद्भुत मशीनरी का इस्तेमाल अपनी जरूरत की चीजें बनाने के लिए कर सकते हैं।
तो ये पारंपरिक औद्योगिक मॉडल से बिल्कुल अलग है, वो मॉडल जो खूब संसाधन खर्च करता है और कचरा पैदा करता है।
हाँ, उससे हटकर एक जैविक, एक पुनर्योजी, रीजनरेटिव मॉडल की तरफ जाने की बात है, खुद को सुधारने वाला मॉडल।
सवाल ये है कि हम प्रकृति से सिर्फ लेने के बजाय उसके साथ साझेदारी में निर्माण कैसे कर सकते हैं, और ऐसी दुनिया दिखेगी कैसी, ये बड़ा सवाल है।
और देखिए, ये सिर्फ तकनीक का मामला नहीं है, ये सोचने का एक नया तरीका भी है। उत्पादन को एक निर्जीव मशीनी प्रक्रिया की तरह नहीं,
बल्कि एक जीवित ढल जाने वाली प्रक्रिया की तरह समझना।
बिल्कुल, ये एक रास्ता सुझाता है कि कैसे इंसान अपनी तकनीकी जरूरतें पूरी करे और साथ ही धरती की सीमाओं का भी सम्मान करे। सिर्फ क्या बनाना है, ये नहीं बल्कि कैसे और क्यों बनाना है, इस पर भी जोर है।
बहुत खूब। चलिए अब इस विषय की और परतों को खोलते हैं। श्रोत हमें सबसे पहले औद्योगिक युग और इस उभरते जैविक युग के फर्क को समझाते हैं।
हाँ।
स्टील और सिलिकॉन पर आधारित पुराना तरीका बहुत ऊर्जा खाता है और काफी बर्बादी करता है। बायोफैब्रिकेशन इसके मुकाबले कई ज्यादा कुशल है, सटीक
और यहाँ तक कि खुद की मरम्मत करने वाला समाधान भी पेश करता है।
हाँ बिल्कुल, हमें सीखना होगा कि प्रकृति की तरह निर्माण कैसे करें। इसके लिए जीवन के बुनियादी लेगो ब्लॉक्स को समझना जरूरी है ना?
एकदम। श्रोत कोशिका को एक छोटे प्रोग्राम किए जा सकने वाले रोबोट जैसा बताते हैं। सोचिए,
एक प्रोग्रामेबल रोबोट।
हाँ, और प्रोटीन वो मानो बहुमुखी नैनो मशीनें हैं, और डीएनए वो तो डिजिटल सोर्स कोड है।
ये उपमाएं कमाल की हैं। जैसे कोशिका के अंदर का राइबोसोम एक 3D प्रिंटर की तरह काम करता है,
और mRNA अणु एक USB ड्राइव की तरह निर्देश लेकर आता है।
है ना दिलचस्प?
बहुत ज्यादा।
फिर सवाल आता है कि अकेली कोशिकाएं मिलकर ऊतक यानी टिश्यू कैसे बनाती हैं?
हाँ, यहाँ एक चीज बहुत अहम है, बाह्य कोशिकीय मैट्रिक्स ECM जिसे कहते हैं।
ECM वो क्या होता है?
ये सिर्फ कोशिकाओं को थामने वाला ढांचा या स्कैफोल्ड नहीं है, ये उनके बीच बातचीत का नेटवर्क भी है और उन्हें माहौल के संकेत भी देता है, एक तरह का सपोर्ट सिस्टम और कम्युनिकेशन नेटवर्क दोनों।
अच्छा।
बायोफैब्रिकेशन में वैज्ञानिक कृत्रिम ढांचे बनाते हैं जो असली ECM की नकल करते हैं, ताकि कोशिकाएं सही तरीके से बढ़कर हड्डी, कार्टिलेज या मांसपेशी जैसा कोई खास टिश्यू बना सकें।
मतलब कोशिकाओं को सही माहौल और दिशा देने जैसा हुआ ये तो?
बिल्कुल, आप उन्हें गाइड कर रहे हैं कि उन्हें क्या बनना है।
तो ये तो हुई बात कि कोशिकाएं कैसे काम करती हैं, पर असल में वैज्ञानिक इन्हें इस्तेमाल करके चीजें बना कैसे रहे हैं? कौन से औजार हैं उनके पास?
कई औजार हैं। सबसे मशहूर तकनीक है 3D बायो प्रिंटिंग।
हाँ, ये नाम तो सुना है।
इसमें जीवित कोशिकाओं वाली एक खास स्याही मतलब बायो इंक इस्तेमाल होती है।
बायो इंक? अच्छा।
हाँ, और उससे परत दर परत टिश्यू बनाए जाते हैं। जरा कल्पना करें, किसी जले हुए मरीज के लिए त्वचा का पैच प्रिंट करना,
या घिसे हुए घुटने के लिए कॉटिलेज बनाना। ये तो कमाल लगता है सुनने में, पर इसमें चुनौतियां भी होंगी?
बिल्कुल। सबसे बड़ी चुनौती है बड़ी संरचनाएं बनाने में। जैसे मान लीजिए पूरा अंग बनाना है।
हाँ?
तो उसमें खून की बारीक नलियों का नेटवर्क कैसे बिछाया जाए, मतलब वैस्कुलर नेटवर्क्स, बिना इसके कोशिकाओं तक पोषण कैसे पहुंचेगा और वो जीवित कैसे रहेंगी, ये अभी भी एक बड़ी पहेली है।
समझ गई, ये मुश्किल लगता है। और क्या तरीके हैं?
एक और दिलचस्प तरीका है निर्देशित स्व संयोजन, डायरेक्टेड सेल्फ असेंबली।
ये क्या है, 3D प्रिंटिंग से अलग?
हाँ, थोड़ा अलग है। 3D प्रिंटिंग में हम हर कोशिका को सही जगह रखते हैं। यहाँ हम कोशिकाओं को सिर्फ सही माहौल और संकेत देते हैं ताकि वो खुद ही सही ढांचे में ढल जाएं।
अच्छा, मतलब जैसे शरीर में प्राकृतिक रूप से होता है?
हाँ, कुछ वैसा ही, प्रकृति की नकल करने की कोशिश, उसके खुद ब खुद संगठित होने के तरीके की।
इसका कोई उदाहरण?
हाँ, ऑर्गेनॉइड्स, ये लैब में उगाए गए छोटे खुद से संगठित होने वाले अंगों जैसे ढांचे हैं, जैसे छोटा सा लिवर या दिमाग का हिस्सा।
अरे वाह, ऑर्गेनॉइड्स।
ये दवाइयों के असर को परखने या बीमारियों को समझने में क्रांति ला सकते हैं।
ये तो वाकई अद्भुत है। अच्छा, और स्रोत टू माइक्रोबियल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम की भी बात करता है, वो क्या है?
हाँ, माइक्रोबियल मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ पर हम बैक्टीरिया या यीस्ट खमीर जैसे छोटे जीवों को, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इंजीनियर करते हैं।
इंजीनियर करते हैं, कैसे?
ताकि वे हमारे लिए खास चीजें बना सकें, जैसे मकड़ी के रेशम जैसा मजबूत प्रोटीन बनाना, या ऐसा बायोप्लास्टिक जो इस्तेमाल के बाद आसानी से गल जाए। ये छोटे जीव मानो नन्हे कारखाने बन जाते हैं।
नन्हे कारखाने, कमाल है।
और इन सब के पीछे एक और ताकतवर विज्ञान है, सिंथेटिक बायोलॉजी।
सिंथेटिक बायोलॉजी?
हाँ, ये हमें कोशिकाओं के DNA को फिर से लिखने या प्रोग्राम करने की क्षमता देता है, मानो हम कंप्यूटर कोड लिख रहे हों।
DNA को प्रोग्राम करना?
हाँ, क्रिस्पर जैसी तकनीकें तो जैसे कोशिकाओं के लिए नए ऐप्स लिखना जैसा है। हम उन्हें ऐसा बना सकते हैं कि वे खुद अपनी जरूरत की ग्रोथ फैक्टर बनाएं, या कोई समस्या होने पर रंग बदल कर संकेत दें।
ये तो जीव विज्ञान और कंप्यूटर विज्ञान का संगम लग रहा है।
बिल्कुल, यही इसकी खूबसूरती है।
इन तकनीकों के इस्तेमाल की संभावनाएं तो मतलब दिमाग घुमा देने वाली हैं। चिकित्सा में तो बहुत उम्मीदें होंगी।
हाँ, चिकित्सा में सबसे ज्यादा, स्रोत बताते हैं कि शायद भविष्य में ऑर्डर पर अंग मिल सके, ऑर्गन्स ऑन डिमांड।
मतलब अंग प्रत्यारोपण की वेटिंग लिस्ट खत्म?
शायद, और कैंसर का इलाज हर मरीज के हिसाब से अलग हो सकता है, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन।
और डायबिटीज के लिए?
टाइप 1 डायबिटीज के लिए इंसुलिन बनाने वाली अग्नाशायी कोशिकाएं मतलब पैंक्रियाटिक आइलेट्स प्रिंट की जा सकती हैं, और ऑर्गन ऑन अ चिप तकनीक से दवाइयों का परीक्षण ज्यादा सुरक्षित और सटीक हो सकता है।
लेकिन ये सिर्फ दवाइयों तक सीमित नहीं है, है ना? श्रोत बताते हैं कि ये हमारे रोजमर्रा के जीवन को भी बदल सकता है।
बिल्कुल, सोचिए लैब में उगाया गया चमड़ा, बायो लेदर या रेशम जिसके लिए जानवरों को पालने की जरूरत ना हो,
या फिर कल्चर्ड मीट जो बिना पशुपालन के मांस उपलब्ध करा सके, ये तो पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा होगा।
हाँ, और बैक्टीरिया से बना बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक कचरे की समस्या कम हो सकती है।
और वो जीवित वास्तुकला वाली बात, लिविंग आर्किटेक्चर।
हाँ, ऐसी इमारतें जिनकी दीवारें शायद हवा साफ कर सकें, रोशनी पैदा कर सकें, या अपनी छोटी मोटी दरारें खुद ही ठीक कर लें।
ये तो सच में भविष्य की बातें लगती हैं।
और एक और क्षेत्र है बायो इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स, ऐसी स्मार्ट त्वचा जो हमारी सेहत पर नजर रखे या दिमाग को सीधे कंप्यूटर या कृत्रिम अंगों से जोड़ने वाले इंटरफेस। मशीन और जीवन के बीच की रेखा वाकई धुंधली हो रही है।
ये सब सुनना बहुत रोमांचक है, पर क्या स्रोत इन तकनीकों से जुड़ी चुनौतियों या चिंताओं पर भी बात करते हैं, कुछ नेगेटिव पहलू?
हाँ बिल्कुल करते हैं, नजरअंदाज नहीं करते। स्रोत आगाह करते हैं कि इन शक्तिशाली तकनीकों के साथ बड़ी नैतिक और सामाजिक चुनौतियां भी जुड़ी हैं।
जैसे कि?
जैसे लैब में बने ऑर्गेनॉइड का नैतिक दर्जा क्या हो, क्या वो एक तरह से जीवित हैं, उनके क्या अधिकार हैं?
ये तो गहरा सवाल है।
और क्या ये महंगी तकनीकें अमीर और गरीब के बीच की खाई को और बढ़ा देंगी? क्या सिर्फ अमीर लोग ही इनका फायदा उठा पाएंगे?
ये भी एक बड़ी चिंता है।
फिर हम कृत्रिम जीवन या प्रकृति में छोड़े जाने वाले जेनेटिक बदलावों को कैसे नियंत्रित करेंगे? क्या इसके गलत इस्तेमाल का खतरा है? ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब सिर्फ वैज्ञानिक नहीं दे सकते।
और नियम कानूनों का क्या? क्या सरकारें, रेगुलेटर्स इस तेज रफ्तार तकनीक के साथ चल पा रहे हैं?
ये एक बड़ी समस्या है। स्रोत कहते हैं कि नियामक ढांचे मतलब रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स अक्सर तकनीक की गति से पीछे रह जाते हैं।
तो फिर हल क्या है?
हल है बातचीत। वैज्ञानिकों, नीति बनाने वालों और आम लोगों के बीच लगातार बातचीत बहुत जरूरी है। हमें मिलकर ये तय करना होगा कि इन ताकतवर औजारों का इस्तेमाल जिम्मेदारी से और सबके भले के लिए हो।
मतलब तकनीक के साथ साथ हमारी समझदारी और नियम भी विकसित होने चाहिए।
एकदम, साथ साथ चलने चाहिए।
इस पूरी चर्चा से कुछ मुख्य बातें या संदेश उभर कर आते हैं। पहला और शायद सबसे अहम, हम शोषण से संवर्धन की ओर बढ़ रहे हैं, एक्सप्लॉयटेशन से कल्टीवेशन।
प्रकृति से सिर्फ संसाधन खींचने के बजाय हम उसके साथ साझेदारी करके अपनी जरूरतें पूरी करना सीख रहे हैं। ये प्रकृति को एक गोदाम की तरह नहीं
बल्कि समाधानों की लाइब्रेरी की तरह देखता है। वाह।
दूसरा अहम संदेश है अलग अलग विषयों का संगम, कन्वर्जेंस ऑफ डिसिप्लिन्स। जैसा हमने देखा, ये फील्ड बायोलॉजी, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, मेडिसिन, डिजाइन सबको साथ लाती हैं।
हाँ, भविष्य के बड़े आविष्कार ऐसे ही कई क्षेत्रों के मिलने से होंगे। हमें पारंपरिक दायरों से बाहर सोचना होगा।
बिल्कुल। तीसरा, प्रकृति ही असली इंजीनियर है, नेचर एज अल्टीमेट टेक्नोलॉजी। स्रोत हमें याद दिलाते हैं कि प्रकृति ने 3.5 अरब साल के विकास में जो तरीके अपनाए हैं, हमें उनका सम्मान करना चाहिए।
लक्ष्य सिर्फ नकल करना नहीं बल्कि सिद्धांतों को समझकर उनसे बेहतर या नए समाधान बनाना है। प्रकृति से सीखना है, उसे हराना नहीं।
सही कहा। चौथा संदेश है व्यक्तिकरण की शक्ति, पावर ऑफ पर्सनलाइजेशन। दवा से लेकर चीजों तक बायोफैब्रिकेशन हमें हर व्यक्ति की जरूरत के हिसाब से चीजें बनाने की अभूतपूर्व क्षमता देता है।
ये वन साइज फिट्स ऑल वाले तरीके से बहुत अलग है। सोचिए ऐसी दवा जो सिर्फ मेरे शरीर के लिए बनी हो।
हाँ, और पांचवा जो आज के समय में बहुत जरूरी है, डिजाइन से ही स्थिरता, सस्टेनेबिलिटी बाय डिजाइन।
कैसे?
जैविक प्रक्रियाएं अक्सर कम ऊर्जा लेती हैं, सामान्य तापमान पर काम करती हैं और ऐसे उत्पाद बना सकती हैं जो पर्यावरण में घुल मिल जाएं। ये जलवायु परिवर्तन और संसाधनों की कमी जैसी चुनौतियों से निपटने में एक शक्तिशाली जरिया बन सकता है।
ये तो बहुत महत्वपूर्ण है।
और छठा, जो शायद सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करता है, तकनीक और नैतिकता का साथ साथ विकास, co-evolution of technology and ethics.
हाँ, ये बात पहले भी आई थी, हमारी तकनीकी क्षमता हमारी नैतिक समझ और नियमों से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ रही है।
बिल्कुल। श्रोत जोर देते हैं कि प्रगति के साथ साथ हमें ज्ञान, सार्वजनिक बहस और सोच समझकर बनाए गए नियमों की भी सख्त जरूरत है। सवाल सिर्फ ये नहीं कि क्या हम ये कर सकते हैं,
बल्कि ये भी है कि क्या हमें ये करना चाहिए और अगर हाँ तो कैसे।
एकदम सही। श्रोतों में कुछ ऐसे विचार भी हैं जो इन बातों को और यादगार बनाते हैं। एक विचार का सार कुछ यूं है, हम एक ऐसी दुनिया से आगे बढ़ रहे हैं जो जीवन के लिए बनी थी, एक ऐसी दुनिया की ओर जो जीवन के साथ बनी है।
भविष्य के कारखाने शोर मचाती मशीनों से नहीं बल्कि शांत गुनगुनाते बायोरिएक्टरों से भरे होंगे और उनका मुख्य कच्चा माल मशीनें या धातु नहीं बल्कि सूचना होगी।
ये पुराने और नए तरीके के फर्क को कितनी खूबसूरती से दिखाता है।
और सूचना को कच्चा माल कहना मतलब जेनेटिक कोड, डिजिटल डिजाइन, ये बताता है कि निर्माण की पूरी प्रक्रिया ही बदल रही है।
हाँ, शोर और धुएं की जगह शांति और जैविक प्रक्रियाएं, अद्भुत।
सिद्धांतों को इतनी गहराई से समझना है कि हम उसके साथ मिलकर वो बना सकें जो शायद अकेले प्रकृति ने भी नहीं बनाया।
हम सिर्फ नकलची नहीं बन रहे हैं, हम रचयिता बन रहे हैं।
ये इस क्षेत्र की महत्वाकांक्षा दिखाता है। प्रकृति से सीखो लेकिन फिर अपनी रचनात्मकता का इस्तेमाल करके इंसानी समस्याओं के ऐसे हल निकालो जो शायद प्रकृति में भी मौजूद न हो।
हाँ, ये इंसानी कल्पना और रचना की भूमिका पर जोर देता है।
और एक चेतावनी भी है जिसका सार था कि हर इंजीनियर के साथ एक नैतिकतावादी, एक नीति निर्माता और एक जागरूक नागरिक होना चाहिए।
हाँ, जो ये पूछे कि हम ये क्यों और किसके लिए बना रहे हैं। हमारी तकनीकी तरक्की हमारी नैतिक समझ से आगे नहीं निकलनी चाहिए।
ये जिम्मेदारी की बात है। ये सिर्फ वैज्ञानिकों का काम नहीं, हम सबका काम है कि तकनीक सही दिशा में जाए
और उसका फायदा सभी को मिले।
तो ये सब सुनने के बाद सवाल उठता है कि ये हमारी जिंदगी को कैसे छू सकता है। स्वास्थ्य में ये उन मरीजों के लिए उम्मीद की किरण है जो सालों से अंग प्रत्यारोपण का इंतजार कर रहे हैं
या लाइलाज बीमारियों से जूझ रहे हैं। डॉक्टरों को हर मरीज के लिए सटीक इलाज डिजाइन करने में मदद मिलेगी, पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट।
इंजीनियरों, डिजाइनरों, आर्किटेक्ट्स के लिए ये बिल्कुल नए किस्म के मटेरियल, जीवित सामग्री के साथ काम करने का मौका है।
हाँ, ऐसी चीजें बनाना जो पर्यावरण के अनुकूल हों, खुद अपनी मरम्मत कर लें या इस्तेमाल के बाद खाद बन जाएं, एक सर्कुलर इकोनॉमी की तरह।
नए व्यापार और निवेश के लिए भी एक बड़ा क्षेत्र है। रीजेनरेटिव मेडिसिन, कल्चर्ड मीट जैसी सेलुलर कृषि, टिकाऊ सामग्री।
हाँ, ये सब एक नई बायो इकोनॉमी को जन्म दे रहे हैं। इसमें बहुत अवसर है।
और हम सबके लिए, आम लोगों के लिए इसका क्या मतलब है?
ये हमें प्रकृति और तकनीक को एक नए नजरिए से देखने का मौका देता है। शायद हम अगली बार कोई चीज खरीदते हुए सोचें, क्या ये प्रकृति के साथ मिलकर बनी है, क्या ये टिकाऊ है।
और ये हमें भविष्य को आकार देने वाली बहसों में हिस्सा लेने के लिए भी प्रेरित करता है। चुपचाप दर्शक बने रहने की बजाय सक्रिय भागीदार बने।
बिल्कुल।
इस पूरी बातचीत से मेरे लिए सबसे बड़ी सीख ये है कि बनाने का मतलब ही बदल रहा है। हम सिर्फ मशीनों से चीजें गढ़ने के बजाय जीवन के साथ, प्रकृति के साथ मिलकर रचना करना सीख रहे हैं। ये सिर्फ तकनीक का बदलाव नहीं,
ये प्रकृति के साथ हमारे रिश्ते का भी बदलाव है। हाँ। ज्यादा सम्मानजनक, ज्यादा टिकाऊ।
हाँ, और आपको सबसे ज्यादा हैरान किस बात ने किया?
मुझे सबसे ज्यादा हैरान इस बात ने किया कि कैसे बायोलॉजी, इंजीनियरिंग और कंप्यूटिंग के मिलने से ऐसे समाधान बन रहे हैं जिनकी हमने पहले कल्पना भी नहीं की थी। जैसे मांग पर मिलने वाले अंग या खुद को ठीक करने वाली इमारतें। ये सच में मन को चकित कर देता है।
पर इसके साथ ही वो जिम्मेदारी वाली बात भी याद रखनी होगी।
हाँ बिल्कुल, इस जबरदस्त शक्ति के साथ कितनी बड़ी जिम्मेदारी जुड़ी है, संतुलन साधना बहुत बहुत जरूरी होगा।
एक अंतिम विचार जो शायद श्रोताओं के मन में रह जाए, अगर हम सचमुच प्रकृति के सिद्धांतों, कुशलता, अनुकूलन, स्थिरता, स्वसंगठन को अपना सकते हैं तो क्या इसका असर सिर्फ चीजें बनाने तक ही सीमित रहेगा?
या ये हमारे समाज को, हमारे अर्थव्यवस्थाओं को और यहाँ तक कि हमारे सोचने के तरीकों को भी बदल सकता है।
क्या हम प्रकृति की तरह ज्यादा लचीले और टिकाऊ समाज बना सकते हैं?
ये वाकई सोचने लायक सवाल है। भविष्य इसी पर निर्भर कर सकता है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।